शालिनी, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में प्लास्टिक उत्पादों का व्यापक उपयोग किया जाता है। ये किस तरह के उत्पाद हैं और उनसे किस तरह का जोखिम उभर कर सामने आता है?
कृषि और खाद्य के क्षेत्र में आप और मैं उपभोक्ता हैं। हम ज़्यादातर कंज्यूमर्स को जो एनवायरमेंटल अवेयरनेस दी जाती है, वो कहा जाता है कि आप अपना जब सब्जी खरीदने जाएं, फल सब्जी खरीदने जाएं, तो आप अपना प्लास्टिक का थैला मत इस्तेमाल करें, आप कपड़े का थैला इस्तेमाल करें। पर वो तो कंजम्पशन एंड पे है। प्लास्टिक के प्रदूषण से जो प्रोडक्शन के स्टेज पे है, जो जब हमारे फल सब्जियां और जो मछली में भी जो पकड़े जाती हैं, उसमें क्या क्या प्लास्टिक इस्तेमाल होते हैं, उनकी जानकारी और उस पे एक विश्व स्तर पे एक ढांचा होने की आवश्यकता है, उसे रेगुलेट करने की आवश्यकता है। क्योंकि अब प्लास्टिक का प्रयोग कृषि उत्पादन के हर क्षेत्र में, चाहे वो लाइफ स्टॉक हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, चाहे वो क्रॉप प्रोडक्शन हो, हर एक क्षेत्र में इतने प्लास्टिक्स इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो मल्च फिल्म्स हो, फॉडर के लिए साइलेज फिल्म्स हो, ग्रीन हाउस फिल्म्स, या जो नेट्स और बैग्स और सैक्स, बोरियां जिसमें एग्रीकेमिकल्स पैक होते हैं, या फिर जो कीटनाशक प्लास्टिक की बोतलों में आते हैं, और ट्यूब्स और ड्रिप लाइंस जो इरिगेशन में इस्तेमाल होते हैं, सिंचाई में, और ट्री गार्ड्स, रस्सियाँ। तो हर एक स्टेज पे कृषि उत्पादन के क्षेत्र में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। पर वो कहाँ जाता है इस्तेमाल के बाद, वो कहाँ एकत्रित हो रहा है? और अगर देखा जाए तो बहुत ही गिने चुने देश हैं जहाँ पे उनको एकत्रित किया जाता है और सही ढंग से उन्हें डिस्कार्ड किया जाता है, नहीं तो विशेष रूप में उन्हें या तो जलाया जाता है, या दफनाया जाता है, या फिर बस खुले में छोड़ दिया जाता है। और वो अब इतने सालों के इस्तेमाल और प्रयोग के बाद एक बहुत बड़ा मुद्दा उठ के आया है, क्योंकि वो केवल ना केवल मिट्टी के स्वास्थ्य पे असर कर रहा है, पर पानी के गुणवत्ता पे भी असर कर रहा है। और उसकी वजह से ये एक खाद्य सुरक्षा का और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और फ्यूचर यील्ड्स का भी मुद्दा बन सकता है।
तो लंबे समय से इन उत्पादों के इस्तेमाल से किस तरह की हानि होने की संभावना होती है?
इस क्षेत्र में शोध और अनुसंधान की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि लंबे समय के बाद उसका असर किस तरह से जीव जंतुओं पे, उसका असर मिट्टी के स्वास्थ्य पे और पानी के गुणवत्ता पे कैसे होता है, उसको समझना और उसके अनुसार फिर सॉल्यूशंस निकालना आवश्यक है। और इसके असर फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स की संभावना है, इसलिए उसके जो पर्यावरण पे जो रिस्क असेसमेंट्स हैं, उसकी आवश्यकता आवश्यक है वो करना। और विशेषता से देखा जाता है कि हम उपभोक्ताओं को तो बोल दिया जाता है, ये संदेश दिया जाता है कि पर्यावरण के बचाव के लिए हमें किस तरह से प्लास्टिक के उपयोग को कम करना चाहिए, पर खाद्य और कृषि के क्षेत्र में उसके उत्पादन में जो प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा है, वो वहाँ से जो शुरुआत है, जहाँ से हमारे फूड चेन की शुरुआत है, उसी स्तर पे प्लास्टिक को कम करने की आवश्यकता है। क्योंकि उसका उनके इस्तेमाल का स्तर अब विश्व भर में बहुत बढ़ गया है।
तो अगर हम दूसरी तरफ समुद्री कूड़े की बात करें, तो क्या उसमें भी जलीय कृषि से उत्पन्न अपशिष्ट से खतरा नजर आ रहा है, या समुद्री कूड़े में प्लास्टिक का योगदान बाहर के कचरे से ही है, यानी भूमि से जो समुद्र में फेंका जा रहा है कचरा, खाली उससे परेशानी है, या जलीय कृषि से भी कोई समस्या उत्पन्न हो रही है?
जलीय कृषि में जो मछुआरे और विशेषतः जो बड़े बड़े ट्रॉलर्स हैं, उनमें भी जो फिशिंग गियर इस्तेमाल होता है, उसे एक खास टर्म दिया गया है, अबैंडन्ड, लॉस्ट और अदरवाइज डिस्कार्डेड फिशिंग गियर। वो एक बहुत बड़ा मसला बन के आया है समुद्री संरक्षण के क्षेत्र में। समुद्री प्रदूषण में पहले से ही 1973 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि बनी थी जिसे मारपोल कन्वेंशन कहा जाता है, विच इज़ स्पेसिफिक कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स, मतलब समुद्री जहाज से जो प्रदूषण आया उसमें भी एक अमेंडमेंट लाया गया जिसमें कहा गया कि डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इनटू द सीज इज़ बैंड। तो ये जो नई प्लास्टिक ट्रीटी की अब बात हो रही है उसके पहले भी समुद्र में जो प्लास्टिक से प्रदूषण है उसके बारे में चिंता व्यक्त की गई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसके लिए एक कानून बनाया गया है। पर जो जो फिशरीज़ में और एक्वाकल्चर में जो फिशिंग गियर इस्तेमाल होता है उसके लिए एक विशेष वेस्ट मैनेजमेंट सेक्शन ये प्रपोज्ड पोल्यूशन ट्रीट प्लास्टिक पोल्यूशन ट्रीटी में उसकी बात की गई है।
तो आपने बताया कि 2025 में प्लास्टिक संधि होने की तैयारी चल रही है, तो उसमें कृषि उत्पादों के बारे में क्या कहा गया है और किस तरह के उपाय उसमें सुझाए गए हैं?
कृषि की दृष्टिकोण से उसमें ये कहा गया है कि सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोचेस होने चाहिए, मतलब कि जब संधि का रूप निकल के आएगा उसमें एक डेडिकेटेड प्रोग्राम ऑफ वर्क फिशरीज़ एक्वाकल्चर और एग्रीकल्चर पे होने चाहिए और विशेषतः पैकेजिंग पे होना चाहिए कि किस तरह से प्लास्टिक का उपयोग पैकेजिंग के क्षेत्र में कम किया जा सकता है, क्या विकल्प हो सकते हैं। और FAO भी इस प्रयास में जुड़ा है कि एक स्वैच्छिक वॉलंटरी कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉर सस्टेनेबल यूज़ एंड मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक्स इन एग्रीकल्चर का ढांचा तैयार कर रहा है, ताकि जो विश्व भर में जो देश इस संधि के सदस्य बने वो इस स्वैच्छिक कोड को अपनाएं और प्लास्टिक्स का उपयोग कम करें और प्लास्टिक प्रदूषण से कैसे बचें। और दूसरी बात ये निकल के आई है जो ज़ीरो ड्राफ्ट है इस संधि में, कॉम्प्लीमेंटैरिटी की बात की गई है कि ये जब नई संधि बनेगी उसमें जो एग्जिस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ किस तरह से तालमेल किया जा सकता है, विशेषतः जैसे एक मारपोल कन्वेंशन है जो समुद्री जहाज़ों के प्रदूषण का एक संधि है जिसमें प्लास्टिक्स को समुद्र में डिस्पोजल के लिए बैन किया गया है, उसके साथ क्या तालमेल होगा। एक और अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे कहा जाता है बाजल कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट्स ऑफ हैजर्डस वेस्ट, उसमें भी प्लास्टिक वेस्ट के लिए अमेंडमेंट्स किए गए थे 2019 में। 2001 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। तो ये जो अभी तक की जो संधियाँ बनी हैं उनके साथ ये नई संधि किस तरह से सिनर्जाइज करेगी, ये कॉम्प्लीमेंटेरिटी और कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की बात की गई है। एक विशेष बात जो कही गई है वो है फिशिंग गियर के मामले में कि जो अबैंडन्ड और लॉस्ट और डिस्कार्डेड फिशिंग गियर है उसका जो प्लास्टिक प्रदूषण है उसे किस तरह से एक वेस्ट मैनेजमेंट सेक्शन के अंतर्गत उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि जो एक प्रोविज़न है संधि में जो प्रॉब्लमैटिक एंड अवॉइडेबल प्लास्टिक्स हैं जिनके उपयोग, जिनके उत्पादन, जिनके आयात निर्यात पे प्रतिबंध लगाना चाहिए उसकी भी एक लिस्टिंग हो। तो एक शुरुआत इस तरह से एक हुई है संधि के अंतर्गत।
तो FAO इस मुद्दे पर किस तरह काम कर रहा है, खासतौर से इस संधि को लेकर जो भी तैयारियां चल रही हैं उस पर, और किस तरह के समाधान ढूंढने की कोशिशें की जा रही हैं?
तो FAO जो संधि की जो नेगोशिएशन हो रहे हैं और जो वार्तालाप चल रही है उसमें वो हिस्सेदार है और एक ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन की हैसियत से। और विश्व भर के लिए जैसे मैंने बताया एक वॉलंटरी कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉर सस्टेनेबल यूज़ एंड मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक्स इन एग्रीकल्चर, उसकी रूपरेखा FAO बना रहा है ताकि जब संधि एंटर इनटू फोर्स होती है तो उस पर एक तैयारी हो कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं जिन्होंने संधि को माना है और उस पर हस्ताक्षर किया है, वो आगे अपनी कार्य रीति इस वॉलंटरी कोड ऑफ कॉन्डक्ट के हिसाब से कर पाएँ। और दूसरी बात, FAO ये एक मॉडल प्रपोज करता है 6R मॉडल के नाम से, ताकि प्लास्टिक पोल्यूशन को रिफ्यूज़ किया जाए, रीडिज़ाइन किया जाए, रिड्यूस किया जाए, रीयूज़ किया जाए, रिसाइकिल किया जाए, और रिकवर कैसे किया जाए। और ये कोई नई बात नहीं है, FAO कई सालों से गुड एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की बात कर रहा है। जब हम गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं या गैप की बात करते हैं, तो ज़्यादातर बात होती है कि पानी का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, भूमि का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं उसको कैसे रैशनलाइज किया जाए, पर उसमें प्लास्टिक्स की बात नहीं होती। तो हम ये बात जोड़ रहे हैं कि प्लास्टिक्स की बात भी इस गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में इंटीग्रेट कैसे किया जाए। और दूसरा जो संदेश FAO की तरफ से है वो एग्रो इकोलॉजी की तरफ से है, एग्रोइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ फार्मिंग में, जैसे कि जो समाधान बायो बेस्ड सॉल्यूशन से निकल सकते हैं और एक बायो सर्कुलर इकोनॉमी बन सकती है, जैसे कि आप प्लास्टिक मल्च फिल्म के बजाय आप किस तरह से कवर क्रॉप्स को साथ में मल्टी क्रॉपिंग के हिसाब से वो एक सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग जिसमें आपको प्लास्टिक के इस्तेमाल करने की कम आवश्यकता पड़े, उस तरह के किस तरह से एक्शन पॉइंट्स हो सकते हैं जो किसानों के साथ आगे लिए जा सकते हैं।